اٹھو میرے ملک کے جوانوں اٹھو انقلاب کا وقت ہے آیا
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے اس میں خدا کے ساتھ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے اس میں خدا کے ساتھ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین تو اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد یہ شعر نہیں ہے یہ ایک مجموعہ ہے اس مجموعے کو کہتے ہیں لا تکفیر اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف شعر پڑھا کرتے ہیں آپ صرف قول پڑھا کرتے ہیں آپ مختلف احادیث کو بیان کرتے ہیں لیکن میں آج آپ کے پاس ایک تاریخی ریسرچ دینے آیا ہوں جو قطن معذرت کے ساتھ میرے اب تک کے مقررین کے بالکل برخلاف ہے اس کی وجہ 85,000 لاشیں شہداء کربلا کا یہ گراؤنڈ ایک وسیع آبادی درودیوں کی کروڑوں میں تعداد لیکن افسوس اب تک 8 سال میں جو مجمع ہم تیار کر سکے تکفیریت کے خلاف وہ بس یہ ہے ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے یہ نوکریاں یہ جائیداد یہ میڈیا سب ادھر ہی رہ جائے گا میری ابتدا یہ ہے کہ 2017 مکافات عمل کا سال ہے اور 2018 تیسری اور آخری خونی عالمی جنگ عظیم کے آغاز کا سال ہے اور اسی پہ ٹوٹل ریسرچ ہے نسبت ہے آج کی لا تکفیر پاکستان کی سطح پہ قانون پسند اور قانون شکن کو لا تکفیر کہا جاتا ہے ریاست کی زبان میں ریاست کے قانون کی زبان میں لا تکفیریت کا مطلب ہے مولانا صاحب گناہ کا جواب میں قبر میں دوں گا آپ کو نہیں اور جرم کا حساب مجھ سے لے ریاست فیصل آبدی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں درودی با مقابلہ بارودی اور ضمیر والے اس کو کہتے ہیں حسینیت با مقابلہ یزیدیت بس اتنا کٹھن بنا دیا آپ نے لا تکفیر کو کہ پورا پاکستان آج یہ ڈسکس کر رہا ہے یہ لا تکفیر کیا ہے یہ کسی رنگ نسل مذہب فرقے کے خلاف نہیں ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آواز حق جب بلند کریں گے قاتل سامنے سے آ جائے گا اسی تکفیر کی ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے خرم زکی شہید تکفیریت کے خلاف جو للکار شہید خرم زکی نے بلند کی وہی لا تکفیر کہلائے گی آج سے جو ساتھی حضرات تھے وہ تو چلے گئے یہاں سے लेकिन मैं उनको ये बताऊं कि उनकी सोच ने पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक की सोच को बुलंद किया, एक ऐसे खतरात को मद्देनजर रखते हुए जो आप लोग चाहते हुए भी नहीं देखना चाहते और समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। दर हकीकत इस तकफीरियत पे 1978 से आपकी खामोशी ने इसको अफरियत बना दिया। जो जंग मेरे जैसे 8 साल से लड़ रहे हैं तो बुजुर्गों को उनकी जवानी में लड़नी चाहिए थी, लेकिन जो मैं आज लड़ रहा हूं उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा उन मासूम बच्चों को जो आपकी गोदों में परवान चढ़ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए ये ड्यूटी आपकी आने वाले नस्लों के लिए अदा की जा रही है। कोई जोश खिताबत नहीं है आज। जोश तो उस वक्त होता है भाई जब कोई अच्छाई की उम्मीद नजर आ रही हो। अब तो होश का वक्त है कि कम से कम नुकसान हो, और नुकसान इतना शदीद है कि आने वाले 2 साल बाद यहां क्या होना है अगर उसका 1% भी मैं आपको बता दूं तो ये घरों में आराम करने वाले लोग यहां पर मैदान में पहुंच जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि ये क्या होने जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जी इसको देखते आए, इसको निमटते आए, दैट वॉज पास्ट, वो माजी है। मुस्तकबिल क्या है वो बताइए, उससे आश्कार कीजिए जिसको इस कौम ने सुनना है। शायद कोई शऊर रखने वाले लोग उस पे अमल करना शुरू करें तो 20 साल बाद मुहज़्ज़िब दुनिया आपको अपनी सफों में जगह देगी। और मैं गुज़िश्ता 8 साल की एक कंप्लीट डिटेल रिसर्च एक ऐसे मजमे के गोश गुजार करने जा रहा हूं जिस पे आज मुझे यकीन हो गया ये जितने इस वक्त पिंडाल में हैं यही तकफीरियत के खिलाफ। बाकियों का मसला तकफीरी नहीं, ना ना ना, यही नुकसान होगा। नारा है तकबीर। मैं इसीलिए कहता हूं 2 मत बजाया करो लोग थक जाते हैं। नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, अल्लाह बहुत बड़ा है। नाराय रिसालत, नाराय रिसालत, रहमत लिल्लालमीन। नाराय हैदरी, नाराय हैदरी, मुनाफिक और मोमिन में तफरीक। पाकिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया में पहली जो शिकस्त होगी तकफीरियत की इंशाल्लाह पाकिस्तान पे होगी। कायदे आजम, कायदे आजम, मेरा बुजुर्ग, मेरा कायद। दुनिया वालों मुझे सियासतदान की निस्बत से नहीं पुकारना, ना मुझे जोड़ना किसी सियासी कायद से। अगर तुम समझती हो कि मेरे अजदाद कौन थे तो आओ मैं तुम्हें आज बताता हूं, मेरे बुजुर्ग का नाम है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। मेरी मां का नाम है मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिसकी 9 जुलाई को होने वाली बरसी को तमाम सियासी जमातों, तमाम मजहबी जमातों ने, तमाम पाकिस्तान के मीडिया ने फरामोश करके और गोशा नशीनी में डालकर यह साबित कर दिया कि हम मोहसिन कुछ लोग हैं, मोहसिन कुची में हमारा सानी नहीं है। है आपको पता कि वो कौन थी खातून? कल को मैं 4 साल बाद मर जाऊंगा मेरे को भी भूल जाओगे भाई, तो मैं किसी के बाप का नौकर थोड़ी हूं जो अपना मत्था मारू ऐसे लोगों के लिए। मैंने किसी की नौकरी थोड़ी कर रखी है पाकिस्तान में। 8 साल में मेरा दरवाजा, मैं दीवार देखता रह गया, आए कोई जवान का बच्चा और आके बोले आप भी, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, नहीं आया। तो फातिमा जिन्ना की बरसी पे जो सलूक किया गया उनकी शहादत के मौके पे वो हमारे सीनों में तहरीर हो गया। मैंने पाकिस्तान के मीडिया से मुकम्मल बायकॉट कर दिया। जो शाहरुख खान और अमिताभ को तो दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी मां मादर मिल्लत शहीद फातिमा जिन्ना के लिए एक लफ्ज बोला नहीं यहां पर कि इन बच्चों को पता चले कि मोहसिन कौन थे। और आप लोग भी खामोश थे। मेरे बुजुर्ग का नाम है लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बुजुर्ग का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बुजुर्ग का नाम है अबुल हसन असफहानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसके नाम की सड़क को इस्लामाबाद से फारिग कर दिया गया। कब्र पे तो जाना दूर की बात, बरसी मनाना तो दूर की बात। मेरे बुजुर्ग का नाम है राजा साहब महमूदाबाद, जिसके सरमाए पे पाकिस्तान पला फड़ा जवान हुआ। बता रहा हूं मैं इनको, ये जो बोलते हैं कि तुम कौन हो। मेरे बुजुर्ग का नाम है जिसने, जिसके साथ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने वो सलूक किया जो यूके के अंदर लंदन में एक छोटे से कमरे के अंदर अपनी जिंदगी गुजार गया, सब कुछ दे गया पाकिस्तान को। तो जो कौम मोहसिन कुशी पे अमल कर रही हो और उस रास्ते पे चल रही हो, खुदा की कसम वहां सिर्फ अजाब आ सकता है, इनकलाब नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मैच तो हो गया, सिचुएशन तो हो गई, अब कैसे हुई ये सुनिए गौर से और मैं बताऊंगा। पूरे अंचोली के घरों में आराम करने वालों, मैं तुमसे अच्छा रहा कि 15 किलोमीटर का सफर करके इधर आया और चार गलियां तुम्हें नागवार गुजरी। कोई मसला नहीं भाई, मीडिया नहीं दिखाना, कोई मसला नहीं, नहीं दिखाना, हमारा एहतराम नहीं कम होगा आप लोगों से। मेरे 16 जलसों को आपने ब्लैकआउट कर दिया, ये भी मुझे पता है कि आप सिर्फ लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, वो दिन दूर नहीं, मालिकान को बता दीजिएगा, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे मोहतरमा फातिमा जिन्ना पे हमारा बायकॉट, वो दिन दूर नहीं, मालिकान को कहिए जाके, जब बहुत जल्द तुम भी इन्हीं सफों में पाए जाओगे, क्योंकि तकफीरियों का पहला निशाना फौज और दूसरे होते ही आप। ये रिसर्च है आपको हदिया की, बताना ये चाह रहा हूं कि इस पिंडाल में जितने लोग मौजूद हैं मेरी नजर में सबसे मोहतरम है पूरे कराची में। उसकी वजह भी बताऊंगा, पूरी डिटेल से बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसकी वजह यह कि मुंतजमीन ने इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ला तकफीर का एक लामुहासिल सिलसिला शुरू हो गया। इंशाल्लाह 12 अगस्त को, 24 जुलाई को लंदन में और 12 अगस्त को रावलपिंडी में बताऊंगा। और अब यहां पे आपको आपकी पहचान बता के जा रहा हूं कि आप कौन लोग सरकार। देखिए बेशुमार मैंने अमेरिकन यूरोपियन रिसर्चर्स को हासिल किया और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि तकफीरियत जिसको खारजियत कहा जाता है उसका सदबाब करने के लिए गोरों ने जिस अज़म को चुना उसका नाम है सूफीज़म। इस पे बहुत डिटेल रिसर्च की मैंने। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू यहीं से की और हदिया भी यहीं से। अब जो कहता है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही तकफीरी है, जिसने आल को निकाल दिया वही तो तकफीरी है, जिसने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बारूदी है और जिसने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बारूदी है, ये फर्क है। पहचानो, खुद खुद पहचानो, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। खुर्रम जकी को तुमने मारा, सबने यहां पर ताजियत की, मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता हूं कि तुमने रसूल और आले रसूल के नाम पे मारा, इश्क करने पे मारा, यही तो उसकी कामयाबी थी। क्यों तुम भूल गए? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली व आला हुपो का इला ताहिरुल विलादा व आला युबुक्सो का इला खबीसुल विलादा। ए अली, जो तुझसे प्यार करे वो हलाल दादा, जो तुझसे बुग्ज रखे वो हराम दादा। तो मुझे ये यकीन हो गया कातिल जो भी था हलाल ही नहीं था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजाज के मुकाम पे खाने काबा पे जलवा फरोज। अच्छा देखें, याद रखें, दो पाकिस्तान थे वजूद में जब आए, एक मगरबी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, एक मशरकी पाकिस्तान जिसमें हम खड़े, मगरबी पाकिस्तान जिसमें हम खड़े, मशरकी पाकिस्तान हो गया अलहदा। हमने डिटेल में जाने के बाद जब ये देखा कि सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मशरिक से एक फितना उठेगा जो खारजी होगा, बाल उसके लंबे होंगे, दाढ़ियां घनी होंगी, रवानी से कुरान पढ़ेंगे, हलक से कुरान नहीं उतरेगा, ज़िबा करेगा, इस्लाम के लिए खारजियत का ये सबसे बड़ा नमूना दिया। अब आप नक्शा उठा लीजिए, जाके देख लीजिएगा कि मशरिक में है ही पाकिस्तान। तो जिसका हुक्म सरकार ने खारजियत के खिलाफ दिया और खारजियत के बनने की नवीद दी, तो आपको पाकिस्तान वसी पैमाने पे नजर आया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। खारजी होने पैदा ही यहां होना था, ना शाम का जिक्र किया, ना इराक का जिक्र किया, ना यमन का जिक्र किया, ना बहरीन का जिक्र किया, ना चाइना का जिक्र किया, ना रूम का जिक्र किया, किया तो कहा मशरिक। नक्शे को आज उठा के देखे मशरिक में पाकिस्तान, लेकिन 1400 साल की तारीख जो मैंने देखी, ताली एक हाथ से नहीं बजी। जहां जहां खारजी आए वहीं वहीं मोमिन सामने आते गए। 1400 साल से ये मुकाबला चलता रहा। तो आप ये जान लें और फख्र करें कि उस खारजियत का सामना करने के लिए आप जैसे आशिक रसूल भी फिर यहीं भेजे। ये आपका मुकाबला है खारजियत से। अमजद साबरी साहब की जब शहादत हुई तो मैंने डिटेल में सोचा कि इस्लाम की इब्तिदा क्या थी, तो पता चला सूफिया इकराम जब इस सरजमीन पे आए, औलाद ए अली, तो वो फारसी बोला करते थे, यहाँ पे मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती थी, लेकिन म्यूजिक यहाँ का कल्चर था। उस म्यूजिक के जरिए अहादीस नबवी और मनकबत को अशार की सूरत में बयान किया। औलिया इकराम ने विजदान की कैफियत तारी हुई, किरदार था मेरे औलिया इकराम का कि लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होते चले गए। उसी अज़्म को निभाया अमजद साबरी साहब ने। और जब मैं उनकी वालदा से मिला तो मैंने उनसे ताज़ियत करने के बाद सबसे पहले मुबारकबाद थी, उनके भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, कभी उनसे पूछिएगा, उन्होंने बोला आप मुबारकबाद किस चीज़ की दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि सूफी इनकलाब दरूदी इनकलाब का आगाज़ अमजद साबरी की शहादत से आपकी चौखट से हो गया। यही तरीका है, ये वाहिद तरीका है। आटे में नमक मिल चुका है। आप फलस्तीन को जरा पढ़िएगा, और जो मैं आज आपको यहां बताने आया हूं मैं आपको खुल के बताऊंगा कि आपसे क्या गलती हो रही है। आपने कभी गौर से देखा कि अगर लाख के आपको 1.25 लाख की कोई दुकान की ऑफर कर रहा है, आप भाग के उसको दुकान पकड़ा रहे हैं, कभी आपने आंखें खोल के देखा कि कराची की 50% जायदाद आपने किसके हवाले कर दी? अफगान महाजरीन के हाथ। अफगान महाजरीन ढका छुपा लफ्ज है, हकीकत में ये अफगान तालिबान है। अफगानिस्तान में ये तालिबान थे, ना इनके हाथों में कोई पुलिस जा सकती है, ना ही कोई सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये आपकी दुकानें और जायदाद को इतनी तेजी से खरीद रहे हैं कि आज नहीं 2 साल के अंदर फैसल आबदी की जबान ये जान ले और आप लोग इसको नोट कर लें कि 2 साल बाद मैं आपको फलस्तीनियों की तरह दर बदर देख रहा हूं। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करें, सुबह जाए तारिक रोड, आपको पता चलेगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आप सब कुछ अपना दे दो, बाद में बैन करो, इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं। खुल के मुकाबला करो, लड़ने का हुनर सीखो, लोगों से मिलना सीखो, लोगों के जनाजों को शानदार बनाइए। आपके शहादा के जनाजे जो इस अंचोली से उठे, ये सामने पाकिस्तान में जितने जनाजे उठे उसके कुल 30% यहां से उठे। क्यों जनाजे? वजह, मेरे घर में तो कोई नहीं मरा, उसके घर में मरा। जिसके घर में शहादत हो जाए वो चाहता है पूरा पाकिस्तान बैन करे, मातम करे, मरसिया पड़े, लेकिन जिसके घर में नहीं होता वो सोता रहता है, भाई मुझे तो कुछ नहीं। यही आलम फलस्तीन और आपका एक ही मुकदमा। और आप तो छोड़ें, लाहौर वाले खुद अपने इर्द गिर्द देखें, रावलपिंडी वाले खुद अपने इर्द गिर्द देखें, इस्लामाबाद वाले खुद अपने इर्द गिर्द देखें, हैदराबाद वाले फिर अपने इर्द गिर्द देखें, तो आपको अंदाजा ये होगा आपके पाकिस्तान की कुल जायदाद का 50% ये सो कॉल्ड अफगान तालिबान ले गए। पहले जिस्म में जहर भर दो, फिर डॉक्टर के पास जाओ टीका लगा दो, तो टीके का काम नहीं है। अब काम है जागने का। और ना जागे, मेरे अकेले का घर है ये। यहां पर सियासत तो मैंने छोड़ दी। डेढ़ होशियार लोग आज भी ये कहते हैं किसी की हिमायत कर दो उसमें शमूलियत करने वाला। यार खुदा को मानो, एक आदमी ने जुबान दे दी कि सियासत ही खत्म कर दी। सियासत नजर आ रही होती तो करता ना। 2018 में जंग नजर आ रही है खुली, तो लड़ना कैसे है? इसका भी तरीका है। मैं सोच चुका, आटा और नमक मिल गया। 3 करोड़ की आबादी में 75 लाख की एक आबादी चली गई, क्योंकि अफगानिस्तान में ये नहीं लड़े, वहां से बुरके पहन के भागे और इधर आके मुसलमान बन गए हम पे, क्योंकि हम सर झुकाने वाले लोग हैं कानून के आगे। लेकिन ये मैं बता दूं, जो जो इनको लाया है, फैसल रजा आप ने साथ में एक और लफ्ज कहा है, 2017 मुकाफाते अमल का साल होगा। जिस जिसने इनको पाला है वो इनको हलाल भी करेगा और मारेगा भी। और यही हुआ फाटा में, वजीरिस्तान में, केपीके में। अब आटे में से नमक कैसे अलग करें, उसका तरीका है। और तरीका यह है कि आज के बाद से जिस शहीद का यौम आए, जो जिनाजा आए, दरूद और सलाम की महफिलों का आगाज कर दो। जो भूल गए अलग करने के लिए फार्मूला तो रसूल खुदा ने खुद दे दिया आपको। जब आपको ये खारजी दिए तारीख ने सरकार की निशानदेही के साथ, तो आप ही को खड़ा किया इन खारजियों के आगे। मैं दुनिया वालों को कहता हूं थैंक यू वेरी मच, हमें अकेला छोड़ दिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये पाकिस्तान के साहबी, ये सियासतदान, ये तजियाकार कह रहे हैं जी दुनिया ने हमें अकेला छोड़ के जुल्म किया। मैं कहता हूं थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अगर हम लड़े तो तारीख ये जरूर लिखेगी मुहिब्बे वतन कायदे आजम के वफादार पाकिस्तानियों ने तन तन्हा इनका मुकाबला किया। कोई हम पर एहसान नहीं है दुनिया का, अलग करना है अलग। सरकार ने इस तमाम ऐसी चीज फराहम की। अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, कायनात में जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ने मेरा नूर खल्क किया। नूर का खल्क करना ऐसा था कि मैं नासा गया, नासा से मुख्तलिफ मैंने रिसर्च हासिल की। हासिल करने के बाद जब मैं आया तो मैं आलमी रिसर्चर्स की एक तंजीम जो आई थी उससे मिला, उसने मुझे वो रिसर्च दिखाई। रिसर्च पे तहरीर था अब से चंद साल बाद सूरज मगरिब से निकलेगा। 1400 साल पहले सरकार ने कहा था सूरज मगरिब से निकलेगा और तोबा के दरवाजे बंद हो जाए। तो मान लीजिए द कमिंग डेस्टिनेशन इज द लास्ट डेस्टिनेशन, उसके बाद फिर वो आएगा जिसको पुकारते हुए 1400 साल गुजर गए। कैसे अलग करेंगे? सरकार ने कहा मौला अली का जिक्र करते जाओ, मोमिन भी अपनी पहचान देगा, मुनाफिक भी अपनी पहचान देगा। गली गली दरूदो सलाम की महफिलों का आगाज करो। जहां जहां दरूदो सलाम चलेगा आटा अलग हो जाएगा, नमक अलग होके खुद बताएगा मैं नमक हूं, मैं नमक हूं, मैं नमक हूं। याद रखना मुसल्ला जद्दोजहद कुफर है तावक्त कि रियासत इसका हुक्म ना दे। हम कानून पसंद लोग हैं, हमें कोई मसला नहीं, आओ और हमें मार दो। इससे बड़ी और हमारी कामयाबी की दलील क्या होगी कि तुमने जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद पे मारा, क्या होगी? हम आए दुनिया में सियासतदानों से लड़ने के लिए नहीं है। सियासतदानों से कतर हमारा कोई मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला तो तकफीरियों से है जिनको खारजी कहा जाता है, जिन्होंने अल्लाह अकबर को खौफ की अलामत बना दिया। जाओ यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, किसी भी भरे मजमे में खड़े होकर कहना नारा तकबीर अल्लाह अकबर, सारा गोरा भाग जाएगा। क्या क्या रहे, क्या क्या रहे, गॉड इज ग्रेट, अल्लाह बहुत बड़ा है और उसका खौफ देखो। आप सोचें आज, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 10 मिनट और, क्योंकि आप में थकन बहुत हो गई। एक दिन ऐसा आएगा आपको मैं बुलाऊंगा। गौर से सुनिए, गौर से देखिए, और आज रात को जाके जो मैं अल्फाज अदा कर रहा हूँ ना आपको, ये पाकिस्तान की तारीख में आपको कोई नहीं बताएगा। लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, मैं उनसे कहूँगा ज़रा बोल के देखो, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। हर महकमे में करप्शन, हर महकमे में अफरा तफरी, तुम हर किसी ना किसी महकमे से वाबस्ता हो, हर जगह चोरी चकारी है। फैसला आपकी को बाद में तोलना, पहले खड़े होकर उस ना हक पे आवाज़ बुलंद करो। सुबह तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा ट्रांसफ़र जो है वो लाड़काना के घने जंगलों में कर दिया है, जहाँ सांप रहते हैं या बिच्छू रहते हैं या तुम रहोगे। बोलना बोलना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा कॉल, जालिम और जाबिर हुकुमरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद। तो जिहाद अजीम करो, आवाज बुलंद करो, बंदूक की जरूरत नहीं, आवाज की जरूरत। जहां जमा हो जाओ, जिधर बैठो, जिससे मिलो, जहां चाय पियो, जहां रिश्तेदारों में जाओ, जहां दोस्तों में जाओ, अपनी मजलूमियत और चौदह पाकिस्तान को आगाह करो और बताओ हमने 15 साल सब्र सुकून से इंसाफ के अमल दरामद का इंतजार किया है। हुक्मरानों, तुमसे ना जायदाद मांग रहे हैं, तुम क्या जायदाद दोगे? हम जानते हैं तुम्हारे बड़े क्या थे। अगर मैं पूछ लूं पाकिस्तान का कोई सियासतदान कायदे आजम के साथ अपने बुजुर्ग की एक तस्वीर दिखा दे तो कुछ नहीं। आप गौर से सुनिए और देखिए कैसल खतरा क्या है, क्यों यहां पर बात हो रही है कि फला चीज गलत है, तीसरा किसी ने कहा यहां पर तकफीर ला तकफीर तीसरे नंबर पे आ गई, यही डूब मरने का मुकाम है। पहले पहले से भी पहले, पहले से भी पहले, उससे भी पहले जो चीज होनी चाहिए पाकिस्तान में वो ला तकफीर होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं, कभी जाइए ऐवान सदर और ऐवान वजीर आजम के स्टाफ से पूछिए, भाई ये जो बाहर सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रखा है, ये सैंड बैग लगाए हुए हैं, ये बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, ये आपके हाउसेस को किससे खतरा है? उसके बाद जाइए पार्लियामेंट में और उनसे पूछिए, भाईजान ये जो आपने बैरिकेड्स और ये सैंड बैग लगाए हुए आपको किससे खतरा है? पूछे ये 345 पार्लियामेंटेरियन से। फिर आ जाइए रेंजर्स के पास चले जाइए, उससे पूछ लीजिए आपकी चौकियों के बाहर जो सैंड बैग लगे हुए हैं आपको किससे खतरा है। फिर मलीर छावनी चले जाइएगा, कमांडर साहब से फोन करके पूछ लीजिएगा, जनाब ये जो आपने हिफाजती इकदाम कर रखे हैं इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना के आपको किससे खतरा है। फिर चले जाइएगा इन मीडिया मालकान से चाय भी पीजिएगा और इनसे पूछ लीजिएगा ये जो आपने नीचे सैंड बैग लगा रखे हैं आपको किससे खतरा है। उसके बाद जाइएगा बिलावल हाउस, जरदारी साहब से पूछ लीजिएगा फोन करके, अंदर तो जाने नहीं देंगे बाहर से बताएंगे, और उनसे पूछिएगा जरदारी साहब इतनी बड़ी बड़ी दीवारें आपको किससे खतरा है। फिर अल्ताफ हुसैन साहब से पूछ लीजिएगा फोन करके, जनाब आपने 90 की हर गली बंद कर रखी है आपको किससे खतरा है। फिर जाइएगा तारिक रोड ताजिर बिरादरी के पास, जिसने कभी हमारी लाशों पे गम नहीं मनाया, इलावा के हम उनको अपने अंदर से तसव्वुर करते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा इतनी बड़ी बड़ी चौकियां बना रखी हैं, गार्ड खड़े कर रखे हैं, आपको किससे खतरा है। मैं जो आपसे कह रहा हूं ये कल आवाज गूंजनी चाहिए, पता चलना चाहिए। उसके बाद मैं पूछता हूं अपनी माओ बहनों से, ये जो देखे मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मुझे पता है मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने बच्चे हैं ये पता है किसको अजीज होते हैं? मेरे 26 जवान जब मारे गए, साथ में जितने लोग थे, मैंने पूछा मन में से पहले आखिरी अल्फाज तो बताओ मेरे साथियों के, तो उसने कहा या अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लफ्ज थे। अमजद साबरी शहीद, खुर्रम जकी, जितने भी बच्चे, जितने भी लोग शहीद हुए, सबके जुबान पे आखिरी लफ्ज था या अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे। तो बच्चे वो खजाना होते हैं, बच्चे वो खजाना होते हैं, ना माँ याद आती है मरते हुए, ना बाप याद आता है, ना बहन, ना भाई, ना बीवी, ना कोई याद रहता है, तो ऊपर अल्लाह की जात याद रहती है, नीचे याद रहता है मेरे छोटे छोटे बच्चे। तो इस कौम की माओ, ये जो बच्चे आप पाल रही हो,
ये जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बाहर भी सैंड बैग लगे, ऊपर खारदार तारे लगी हैं। यहां से आप सोच सकती हो कि मेहमान निकलेंगे, साइकोलॉजिकल पेशेंट बनेंगे। एपीएस के बच्चों को जब से शहीद किया, आप लोगों को ख्याल आ गया, स्कूल के बाहर बैठ गए, दो महीने बाद माँ बाप भी गायब हो गए। अब बच्चे रहमो करम पर हैं, स्कूल में जा रहे हैं, पता नहीं चलता स्कूल जा रहे हैं या किसी चौकी में जा रहे हैं। जिन चौकियों में खौफ का आंसर आ जाए, वहां पे जमीर भी खत्म, मेहमान भी खत्म, तालीम भी खत्म। तो आप बताओ ना, आपको किससे खतरा है? ये इमाम बारगाह है, ये मसाजिद, ये तबलीगी इज्तमा, ये तमाम ईदगाहें, ईद की नमाज पढ़ो, मुहर्रम के मातम करो, मजलिस करो, नात पढ़ो, हदिया दो, जो दिल चाहे करो। जिस इबादत गाह के बाहर जाओ, चर्च से पूछ लो तुम्हें किससे खतरा है, मंदिर वालों से पूछो तुम्हें किससे खतरा है, इमाम बारगाह वालों से पूछो तुम्हें किससे खतरा है, मस्जिद वालों से पूछो तुम्हें किससे खतरा है, तबलीगी इज्तमा से पूछो तुम्हें किससे खतरा है। बस यही तो बताना था, और इसलिए अंचोली आया था कि जिसको सबसे खतरा है वही तो असल खतरा है। वही असल खतरा है, ना करप्शन खतरा है। करप्शन खत्म की तो ये कौम ही जहर दे के मार देगी, क्योंकि सिस्टम ने जकड़ लिया। ना रेलवे मसला है, ना पीआईए मसला है, ना स्टील मिल्स मसला है, ना गवादर मसला है, ना गैस पाइपलाइन मसला है। मसला है तो सिर्फ तकवीरी मसला है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं कब्र में चला गया तो कैसी पीआईए, कैसी स्टील मिल, कैसी रेलवे, कैसी जिंदगी। लड़ेंगे कैसे? 23 मार्च 2014 को ये फार्मूला मैंने अब तक टेलीविजन, अब तक के प्रोग्राम, एआरवाई के प्रोग्राम, अब तक में अपनी एक मोहतरम नैन सदफ अब्दुल जब्बार को इंटरव्यू में रोड मैप दिया था। 2013 में इसका आगाज किया था, रिसर्च थी 2009 से लेकर 2013 तक। अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे गामजन है, कोई 19-20 हमने नहीं किया। ये जहनशीन कर लें कि फैसल रजा अब्दी का सियासी ताल्लुक अब ख़त्म है, सियासत में रियासत, रियासत पाकिस्तान मेरे बुजुर्गों ने बनाया। जब बनाया है तो तकफीरियों हिफाजत भी हम करेंगे। उसकी वजह यह कि आज हमारा नारा है पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये भी कयामत तक चलेंगे, बेफिक्र हो जाओ, नहीं खत्म हो सकते ये। कयामत तक ये भी चलेंगे और हम भी चलेंगे। तो आने वाले ये बच्चे जवान होकर नारा मारेंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। ये है। लड़ेंगे कैसे? बिल्कुल जैनशीन कर लो, असला नहीं उठाना किसी भी सूरत में। उसकी वजह यह है कि 15 साल से हमारी गिरी हुई लाशों पे जिस तरह सबर और इशार के साथ हमने इंसाफ को इंतजार किया, अपने गुस्से को फरामोश किया। पाकिस्तान में अब तक अगर ये शाम या इराक नहीं बना तो इसमें किसी का एहसान नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर पाकिस्तान पे तारीख ये एहसान लिखेगी तो 14 पाकिस्तान के वारसीन का ये एहसान है, इनकी वजह से। बता ये असला उठा लेते तो कयामत हो जाए। कोई पंजाबी सिंधी पठान बलोच का झगड़ा नहीं है। उसकी वजह यह है, पंजाब वालों, केपीके वालों, बलोचिस्तान वालों, सिंध वालों, आओ कराची आओ, बातें बाद में करना। यहां बसने वाले पंजाबियों से भी पूछ लो, सिंधियों से भी पूछ लो, पख्तूनों से भी पूछ लो, बलोचों से भी पूछ लो, हर कैटेगरी से पूछ लो कि इनको यहां पे मालिकाना हकूक देने वाला एक शिया भी था और उर्दू बोलने वाला भी था, मैंने दिए। इसलिए कि नफरत परवान ना चढ़े। जब हमने आपकी मिल्कियत को ही तस्लीम कर लिया तो झगड़ा काहे का है? यही तमाम मजदूर थे कैटेगरी के, हमने कंफर्म किए इदारों में। जो कहते ना टेलीविजन पे बोलता, उनको मैं बताऊं, जब मेरे पास इख्तियार आया तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तारीखी डिलीवरी मैंने दी। छुपाया इस मीडिया ने इसलिए कि मेरे नाम के आगे सैयद और आखिर में आप दिया था। लेकिन ये ड्यूटी थी। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी ही तो बनाना था। उसकी वजह यह कि फैसल आप भी शऊर रखने वाला आदमी है। यही लाशें तकवीरियों के हाथ से गिरती हुई मैंने APS में, बाचा खान यूनिवर्सिटी में, दर्रा और खैबर बाजारों के अंदर पख्तून माओ बहनों और बुजुर्गों की भी देखी। यही लाशें गिरती हुई मैंने बलोचिस्तान में भी देखी। मैं तो तमाम शहदा के प्रोग्राम्स में गया, उनके साथ में जो ताजियत कर सकता था तन तना वो मैंने की। यही लाशें मैंने पंजाब में भी देखी, मून मार्केट में, दाता दरबार में, बरी इमाम में, सकी सरवर में, हर तरफ देखी। यही लाशें मैंने इंटीरियर सिंध में शिकारपुर, इमाम बारगाह और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी आंखों से देखी। और यही लाशें मैंने कराची में देखी। तो जब हम सबका दुश्मन एक है तो उसके खिलाफ हम सब पाकिस्तानी भी एक है, हर सूरत एक है। मैंने इराक की रिसर्च की, मैंने शाम की रिसर्च की, 18 मुल्कों की रिसर्च आने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इब्तिदा क्या हुई। और हाल ही में कल तुर्की के अंदर ये वाज़े सबूत भी आ गया और मेरी रिसर्च के ऊपर मोहर तस्दीक हो गई कि सबसे पहले इनका काम ही होता है मुसलमानों में तफरीक डालो, शिया करो, सुन्नी करो, देवबंदी करो, अहल हदीस करो, वहाबी करो, हर तरफ तफरीक कर दो। दूसरा इनका काम ये होता है कि अफवाज पाकिस्तान, सॉरी अफवाज जो वहाँ की हैं, तुर्की की हैं, शाम की हैं, इराक की हैं, उनके अंदर कमांड डालो और स्प्रेड कर दो। लेकिन मैंने कामयाब होते हुए अगर जिंदगी में कोई आवाम देखी तो शाम की आवाम को सलाम, इराक की आवाम को सलाम, यमन की मजलूम आवाम को सलाम, बहरीन के बेकस मुसलमानों को सलाम और अब तुर्की की भी आवाम को सलाम। सूफिया की सरजमीन है, सूफिया की। कैसे कौम अफवाज वहां की अफवाज के साथ खड़ी हो गई। कोई एजेंट बोलता है, कोई फला बोलता है, मियां जो एजेंट होते हैं उनके तो जो जलसों के स्टेज बन रहे होते हैं उसमें कील ठोकते हुए भी ये दिखा रहे होते हैं। ब्लैकआउट थोड़ी होता है एजेंटों के लिए। इसलिए मैंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के साथ बैकबोन बन जाओ। और उस पर मैंने मौला अली का कॉल को अपने लिए राह निजात बनाया कि किसी से अकीदत हो। देखे मेरी बात सुने, 2010 में मुझे नहीं पता पहले क्या था, मैं पहले जाना भी नहीं चाहता, मुझे सब पता है कि क्या था, किसने किया, किसने पाले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए यह है कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी या पाकिस्तान की मस्जिद शाह फैसल के आते में दो लोग नहीं है फातिहा पढ़ने वाले, ये अल्लाह ताला की तरफ से उसको जवाब था। तो क्या किया, अमजद साबरी के तो आज भी कबर पे चले जाओ, एडी साहब की कबर पे चले जाओ, पता चल जाएगा कि इंसान क्या होता। किरदार चाहिए, अल्लाह ने आपको दिया पहला, ललकार चाहिए तकफीरियत के खिलाफ, फिर चाहिए कलाम चाहिए जो पढ़ा जाए, फिर उसको बोलने वाला चाहिए, अदा करने वाला, अदायगी करने वाला जो सफीर होता है, और फिर किरदार आपकी अपनी जात का चाहिए। तो अल्लाह ताला ने चारों किरदार आपको दिए, आप देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, सुनते हैं चले जाते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम देख के कहते हैं बड़ा मजा आ गया, अगले से पूछो ये अदा करने में उसको कितना मजा आया, बताएगा वो तुम्हें। किरदार चाहिए ललकार के लिए, अल्लाह ताला ने आपको निशानी दी खुर्रम ज़की शहीद। अदा करने के लिए कलाम चाहिए, आपको निशानी दी सिप्ते जाफर शहीद। उसकी अदायगी के लिए सफीर चाहिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिक्र का सफीर अमजद साबरी शहीद। और आपका किरदार चाहिए आजी और इनकिसारी के साथ अब्दुल सत्तारी भी मरूं। जो मेरी सोच से मुंसलिक है आज से वो अपने किरदार को आजी और इंतजारी के साथ लाए, गली कुचों में बैठ जाओ, रोडें हमारी मिल्कियत हैं, सड़कें हमारी मिल्कियत हैं, हम नहीं निकलेंगे किसी की सियासत के लिए, हम नहीं निकलेंगे। फैसल आप भी सिर्फ एक ही बार निकलेगा और वो एक बार ऐसा निकलेगा या तुम नहीं या फिर हम नहीं। बताता हूं कि हम कब निकलेंगे। 2010 में तालिबान के खिलाफ कोई भी शख्सियत किसी भी ओहदे पे आ जाए, याद रखना पॉलिसी इदारे की होती है, जिसको 10 से 15 साल की रिसर्च के बाद बनाया जाता है और 15 साल आगे देख के तश्कील दिया जाता है। तो 2010 में अफवाज पाकिस्तान के इदारे ने तालिबान को दुश्मन डिक्लेयर किया। फैसल रजा आप भी उस वक्त सेनेटर था। पीपल्स पार्टी और तमाम वज़रा और उसकी क़यादत की मुखालफत लेते हुए मैंने मौला अली के कॉल के मुताबिक कि किसी से अकीदत और मोहब्बत को आजमाना हो तो आखिरी नहज तक जाओ, नतीजा जो भी निकले आखिर में या तो तुम्हें एक बेहतरीन दोस्त मिलेगा या तारीख का बेहतरीन सबक मिलेगा। तो मैंने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, सेनेट भी गई, सियासत भी गई, आजादी भी गया, कारोबार भी गया, लेकिन आज तक खड़ा हूं और मैं ये आपको बता दूंगा या तो दोस्त मिल जाए या फिर सबक मिल जाए, लेकिन सबक का फैसला मैं नहीं करूंगा, ये बच्चे करेंगे, तारीख करेंगे। बोलो बोलो एजेंट, बोलो बोलो, नहीं तो आप बताइए आपके पास क्या दलील है बचाने की। हमें सुनने को तैयार हूं, आप बता दें जितने लोग बैठे हैं कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तो आइए बताइए ना, फिर हम भी उसको सोचेंगे, हम आपको मजबूत करेंगे। कोई क़यादत नहीं करेगा ला तकफीर की, ला तकफीर का कायद है पाकिस्तान में कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, जिना का पाकिस्तानी तो मौत है इनकी। तो खड़े हो गए, 7,000 लाशें आई हैं फौज पाकिस्तान, वजीरिस्तान फाटा केपीके के अंदर ऑपरेशन करने के बाद जाहिर सी बात है इतना मैस हो चुका है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन तहम्मुल और एतमाद के साथ आपने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे अपने एतमाद को नहीं खड़े होने देना। मैं जिंदा हूं या ना हूं, लेकिन एक वक्त आएगा आप कहोगे खड़े होके कि इसने सही कहा था। अगर मौजूदा सोच जो इस वक्त पाकिस्तान के सिपे सालार की है वो 1% रह जाए इदारे में, तब भी खड़े रहना, यहीं से राय निजात निकलेगी, यही ये इन तकफीरियों का मुकाबला खुद फौज करेगी। और अवाम पाकिस्तान 1965 की तरह फौज का सपोर्ट करके इन तकफीरियों को वह उठा के फेंकेगी जहां से ही आए थे। अबे किरदार आपको भी तो चाहिए ना, तो किरदार है कौम फिर वही है तबाही का निशाना, है कौम फिर वही है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली हो। ये इसको लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बस 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 यही समझाना चाह रहा था। आटे में नमक अलग करना चाहते हो ना, पता नहीं गली के अंदर कौन आ गया, दरूद की महफिल लगा लो, वो खुद बताएगा मैं कौन हूं। समझ में आया एसओपी, वो खुद बताएगा, इसको तफरीक करो। अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई मदद करना चाहते हैं तो खबरदार असला ना उठाना, वो गलती नहीं करना जो शाम में की, जो इराक में इराकियों ने की। आखिर में बहुत कुर्बानियां देने के बाद एक मुकम्मल जंग लड़नी पड़ी और उसमें बेनतिया कुर्बानियों के बाद अल्लाह ताला ने उनको फतेहयाब किया। फतेहयाब की गारंटी तो अल्लाह ताला ने आपको पहले ही दी हुई है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो हम पर धमाके करते हैं, ये जो हमें धमकियां देते हैं, ये जो हमें सोचते हैं और हमें बुलाते हैं और जो हमें बारह गोलियों से और धमाकों का निशाना बनते हैं, तुम्हें भी पैगाम है शौदा के लवाइकिन की तरफ से कि मत सोच के हम तेरे धमाकों से डरे हैं। ला तकफीर का पैगाम, मत सोच के हम तेरे धमाकों से डरे हैं। आओ तकफीरियों, आओ दहशत गर्दों, आओ उनके पालने वालों, आओ उनके चाहने वालों, देखो हमारी माओ के इस वक्त गोद के अंदर जो 2 साल और 4 साल के बच्चे हैं, इसकी मुस्कुराहट तुम्हारी शिकस्त का ऐलान है। 15 साल में कोई और कौम होती वो डर के मारे या तो जमीन में समा जाती या हिजरत कर जाती। इनकी तारीख बता रही है, इन माओं की खुशी बता रही है, इन बुजुर्गों का साथ बता रहा है, इन जवानों की ललकार बता रही है कि मत सोच के हम तेरे धमाकों से डरे हैं, ये जुल्म तो मोमिन पे पहले भी हुए हैं, तू रस्म यजीदी को बड़े शौक से अपना, हम फातिमा ज़हरा की दुआओं में पले हैं।
जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
इंशाल्लाह हम निकलेंगे, लेकिन उस दिन का चुनाव किया है मैंने जिस दिन एतमाम हुज्जत हो जाए, जिस दिन दुनिया हमसे ये ना पूछे क्या, क्यों, कैसे, कब, समझे इस बात। वो एतमाम हुज्जत का दिन है, जनवरी का पहला हफ्ता, जिस दिन पाकिस्तान से इंसाफ की वाहिद अलामत, आखिरी उम्मीद, मिलिट्री कोर्ट का खात्मा होगा। तुम्हारी अदालतों ने 65 साल हमें कोई इंसाफ नहीं दिया। कितने शर्म और डूब मरने की बात है सियासतदानों, हुक्मरानों, कि तुम्हारे सामने ये मजलूम माओ बहनों का मजमा क्या मांग रहा है, इंसाफ। और क्या मांग रहा, मुझसे एक ने अमेरिका में पूछा आप हर वक्त सोच में घूम रहती हो, आप क्या सोचते हो? मैंने कहा बस मैं ये सोचता हूं कि मैं जिंदा कैसे रहूं, मैं जिंदा कैसे रहूं। इंसाफ मांगता है तुमसे, इंसाफ। और अगर वो भी तुम इंसाफ ना दे सको तो तुम्हारे पास पांच महीने लास्ट फाइव मंथ्स। और जिस दिन मिलिट्री कोर्ट का खात्मा होगा पाकिस्तान से इंसाफ की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। वो दिन है एतमाम हुज्जत का दिन, बस के फौरन बाद निकलेंगे, सड़क पे बैठेंगे, आलमगीर धरना करेंगे, कायदे आजम की तस्वीर क़यादत करेगी, और हमारे सिर्फ दो मुतालबे होंगे, मियां नवाज शरीफ समेत पांचों वजीर आला के अंगूठों के निशान चेक करा दो। अगर ये सही निकले, देखो दलील के साथ, बस 5 मिनट और इजाजत, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।